ओम शांति। भट्टी में आकर के बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों को हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो श्वास है, जो भोजन है, वो ये मुरली है। और जैसे हम मुरली को दोबारा तीसरी बार थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं, तो फिर सारे दिन हमारी जो है वो चिंतन में रहती है। तो सबसे पहले बाबा विशेष आज किस बात की ध्यान खिंचवा रहे हैं कि रूहानी स्नेह और छिरखंड होकर के कोई भी लून पानी ना हो, कोई मतभेद में हम ना आए, तो रूहानी स्नेह हो। तो रूहानी स्नेह आपस में हो तो उसके लिए हमको किस चीज की ध्यान रखना होगा? हाँ जी, गुड, बहुत अच्छी बात है जी। और कुछ बताएंगे? हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, जब हम सर्विस पर रहेंगे तो बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बाबा ने पूछा कि अपने आप को पूछो, अपने दिल से पूछो कि मैं बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें पूरा चार पांच प्रश्न दिए हैं। तो दिल पर चढ़ने के लिए बाबा ने आज विशेष कहा कि ऑलराउंडर सेवा। तो बाबा ये भी बताए बीच में कि रोटी पकाना, भोजन बनाना और सब सेवा के लिए, लेकिन मतभेद में हम न आए, स्नेह हो, तो उसके लिए कैसे? मतलब जो रिगार्ड की भी बात आई, तो एक स्नेह किस में टिकता है? गुड, ये आज विशेष बाबा ने बार बार इस बात को ध्यान खींचवाया है। बड़े सुंदर शब्द कहा है कि आप लोग अभी ईश्वरीय फैमिली टाइप बिल्कुल फिर दैवी फैमिली टाइप में जाएंगे, फिर क्या होगा? पीछे वाले भी बोलेंगे कुछ, फिर चंद्रवंशी फैमिली टाइप संप्रदाय, वैसे बाबा कहते हैं बीच में भी। तो बड़ा अच्छा जी, ये बिल्कुल नया जैसे कि शब्द था, आप इस पर भी विचार करना। जब हम ईश्वरीय फैमिली की बात ये करते हैं तो कैसे, माना उस तरफ से हमारा जैसे कि किनारा हो गया हो। तो हालांकि संस्कार में तो है, जब समय आता है तो कुछ बातें आ ही जाता है, परंतु कितने जल्दी हम उससे बाहर अपने को ले आ पाते हैं, तब जाकर के हमारी रूहानी स्नेह टिक पाएगा। और विशेष कहा दैवी गुणों को, ये प्रश्न पूछें हम अपने को, कितना दैवी गुणों को हम अपने अंदर मतलब धारण कर रहे हैं, क्योंकि जो दैवी फैमिली टाइप में संप्रदाय में हमको जाना है, वो भी कितने पीढ़ी के लिए कहा बाबा ने, जन्म शब्द कहा। हाँ जी, 21 पीढ़ी पूरा हमको वो प्राप्त होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि आगे का भी बाबा कहते हैं 3 हिस्सा हम लोगों को वो मिलता है। हाँ, बाहर वालों को थोड़ा सा बाबा कहते हैं आधा आधा। उसमें भी आज एक बहुत सुंदर बातें बाबा ने बताई कि सभी को मैं आकर के जीवन मुक्ति देता हूं। तो आप इस पर भी विचार करना आज कि हमको तो बाबा 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति देते हैं, जहां पर कैसे हमारे संबंध कैसे होगा और कैसे कोई प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, प्रकृति कैसी होगी, लेकिन और जो आत्माएं हैं तो उनको कैसे बाबा जीवन मुक्ति देते हैं, बताएंगे कोई? हाँ जी, थोड़ा आवाज से बोलेंगे जी। नहीं आ रहे आवाज में, रुक। बहन जी क्या मौन मुरली में तो बता सकते हैं? अच्छा भाई जी कोई, हाँ ये बात ठीक है। कोई भी आत्मा जब परमधाम से यहाँ पाठ बजाने के लिए आती है, उनकी पहले जीवन मुक्ति अवस्था होती है। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा अभी भी कलयुग के अंत में भी आ रही है तो उनका पूरा नाम वाला हो जाता है, और वो उतना भी सुख में, मतलब आधा आधा उनको महसूस होती है। तो उस प्रकार से उनको भी जीवन मुक्ति, क्योंकि पिता तो सबका है ना, मालिक आज बताया ना कि मात पिता, भारत वाले तो हम उनको मात पिता कहते हैं ना, तो और लोग तो खाली फादर कहते हैं, लेकिन मालिक कहते हैं, लेकिन मात पिता के रूप में हम भारतवासी ही उनको मानते हैं। तो फिर बाबा बड़ा सुंदर बातें कहते हैं, तो पिता फिर रचना कैसे रचेंगे, मदर तो चाहिए ना, तो कौन है हमारा मदर, ब्रह्मा माँ, तो उनके द्वारा फिर कैसे नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और फिर शंकर बहुत सुंदर बजाते हैं, ये तीनों तो मेरे बच्चे हैं, मतलब ऐसी बातें तो कोई और मनुष्य कह ही नहीं सकता है ना। हम तो गाते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्या क्या क्या, लेकिन ये तीनों भी मेरे बच्चे हैं, तो ऐसी बातें तो अथॉरिटी ही बोल सकते हैं ना। और कैसे वो स्थापना, फिर रचयिता रचना का आदि मध्यांत का हमको ये बताते हैं। तो रचयिता रचना का आदि मध्यांत ज्यादातर हम यही सोच लेते हैं कि समझो सृष्टि के आदि का हमें बताते हैं, मध्य का भी बताते हैं, कैसे भक्ति मार्ग शुरू हुआ और फिर अंत में कैसे हम संगम में आके पहुंचे, बस यही समझते हैं। लेकिन आप इसमें भी विचार करिएगा, फिर बाबा ने कहते हैं कि जो तदवीर है, जो तकदीर बनाने का जो तदवीर, एक्यूरेट आपको चलना है, जो पुरुषार्थ है, वो मैं आकर के आपको बताता हूँ। परंतु आप लोग क्या है, अलग अलग जो है बन जाते हो, चाहे प्रजा साहूकार, कोई राजाई में, कोई आदि आदि। ये क्या है इसकी गहराई, कि ये जो बाबा जो स्थापना कर रहे हैं, ठीक है तीनों इनके द्वारा, लेकिन हम अपनी जो तकदीर बनाने की जो तदवीर बाबा पुरुषार्थ बता रहे हैं, उसमें जितना हम अपनी पुरुषार्थ के आधार पर जो स्थापना हम करते हैं, जैसे हमारा संकल्प होता है, स्वमान होता है, जैसे चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं अपना, क्योंकि तीनों बातें बताया ना कि मैं ब्राह्मण और देवता और क्षत्रिय, तीनों धर्म की मैं स्थापना करता हूं यहां पर आकर के। तो फिर उसी प्रकार फिर हमारे जो सत्य की स्थापना का, हम खुद ही उसका, जैसे कि पुरुषार्थ में उसमें भी हम रचयिता बनते हैं, हम खुद का अपनी पद का, और बाबा आकर के हमको वो तकदीर बनाने की तदवीर पुरुषार्थ जो है वो हमको बताते हैं। तो इस प्रकार से हम भी अपना तीनों पार्ट बजा रहे हैं। बाबा भी कई बार कहा था ब्राह्मण क्षेत्र कैसे फरिश्ता और फिर देवता बनेंगे, ये तीनों पार्ट तो बजाते हैं ना। और विशेष कौन सी गुणों की, जो हमारी जो बाबा ने बताया कि अपने को हम प्रश्न पूछें कि दैवी गुण हमारे अंदर आ रही है, तो एक है हमारी आसुरी गुण, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम नहीं लेंगे, लेकिन एक है हमारी ब्राह्मणों की गुण जो हम बाबा के बच्चे बने, और दूसरा है हमारी कौन सा गुण, दैवी गुण है, और बीच का कौन सा गुण है हमको बाबा ने बताया, जो ब्राह्मणों का गुण है वो ईश्वरीय गुण है, और कुछ हमारे मानवीय गुण भी है। तो क्या हम इस बात को भी कभी विचार करते हैं, बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ पर भी आते हैं, हम उनके साथ करीब बहुत करीब जाते हैं और बड़े अच्छे उनके गुण होते हैं, और हमें इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं, थोड़ा हमारे लिए कई बार प्रश्न उठ जाता है, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए ही कह रहा हूँ। तो हमारे में भी वो चीजें होनी चाहिए जो बाबा कहते हैं, अभी हमारी वो ब्राह्मण का गुण। तो क्या है हमारे ब्राह्मणों का गुण, खीरखंड होकर के रहना, ये ब्राह्मणों का गुण है, और कुछ मीठा बोलना, शांत रहना। हाँ जी, हाँ, लेकिन ये लायक, बाबा ने कहा लायक वे हैं, हाँ लायक वे हैं जो दूसरों को लायक बनाते हैं, हाँ। लेकिन बाबा ने फिर कहा पंडित नहीं बनना है। तो उन चीजों को पहले हम ईश्वरीय गुणों को, जो पहले अपने अंदर जो ब्राह्मणों के गुणों को ला करके, फिर हम दूसरों को अपने जीवन का, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल रखा ना अपना खुद, तो ऐसे हमको बनना है बाप समान, मतलब यहीं रहते हुए हमें वो जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। और एक ऑलराउंडर सेवा के लिए बाबा ने कभी मुरली में कहे थे, तो क्या कहे थे, नहीं वो तो ठीक है, रोटी भी पकाना है, फलाने भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन हमें तो बड़ी ये बात पढ़ते हुए मुझे याद आ रहा था, आप लोग तो शायद जो सेंटर पे दीदियां रहती हैं तो उनका भी फिर भी थोड़ा संगठन रहता है, परिवार तो आपका जैसे ही छोटा ही था लॉकडाउन में, सब लोग तो हम बंद हो गए लेकिन जब हम ज्ञान सरोवर में थे तो हमको वो दिन थोड़ा याद आ रहा था, पीछे मैं इसको पढ़ते हुए याद कर रहा था, मुरली से मेरे को याद आ गया, जो भाई यहाँ ज्ञान सरोवर वाले बैठे हैं वे तो जानते हैं, बड़ा अच्छा लगा कि कैसे हम लोग रोटी बनाने में भी जाते थे, सब्जी काटने में भी जाते थे, झाड़ू भी लगाते थे, मतलब ऐसा लगा कि हमारा घर है, परिवार है और सब मिल करके हम लोग ये करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पहले ऐसा हम एक दूसरे से इतने नजदीक जाते थे और मिलते थे, तो वो भी एक बड़ा अच्छा मतलब जो ऑलराउंडर सेवा का, यहाँ लगा ही नहीं कि हम मतलब लॉकडाउन में हैं, लेकिन अंदर ही रहते थे, लगता था कि बिल्कुल हम तो बढ़िया फैमिली के अंदर है, क्योंकि बड़ा कैंपस था और एक दूसरे के, और फिर भी जो विशेषता जिसके अंदर थे वो भी सब कार्य कर रहे थे, मेरे भी कुछ और विशेषता थी, मैं भी वो उसको भी यूज कर रहा था। खैर तो इसमें बाबा कहते हैं कि जो ऑलराउंडर सेवा में, उसमें एक नोट करिएगा वो बात को बाबा ने कहा, जो सर्विस की बात दिल पर चढ़ने की, जो मनसा वाचा और कर्मणा, बाबा ने कहा जो याद, केवल नहीं रोटी पका रहे हैं, केवल नहीं आप भाषण कर रहे, लेकिन मनसा वाचा और कर्मणा तीनों का अगर मतलब साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ चल रहा है, मनसा की आपकी वृत्ति जो स्लोगन है रूहानियत की, हम खुशबू कैसे फैलाएंगे, तो वो हमें रहे, तो उसमें भी फिर क्या होगा कि हमारी ईश्वरीय परिवार में भी और जिनको हम ज्ञान भी सुना रहे हैं या कुछ उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी फिर ऐसा लगेगा कि ये ईश्वरीय पालना उनको मिल रही है, जैसे बाबा को हम सभी कहते हैं बाबा, तो हमको भी वो उनको फीलिंग ऐसी आएंगी कि ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, हम जो यहाँ पर आए हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो आए हैं, लेकिन ये हमारा फैमिली है। तो बाबा यही बात तो कह रहे हैं कि जो सेवा आप कर रहे हो, केवल ज्ञान नहीं देना, केवल बाबा का परिचय नहीं देना, लेकिन वो अपना वो जो परिवार है, वो जो पालना है, दादी दीदी कैसे हम लोग भी बाबा के करीब कैसे आए, यही तो कुछ चीजें जो वहां से बाहर दुनिया से निराला चीजें मिला जो हम इस तरफ आ गए, और हमारा जीवन कैसे अनुभव बाबा को साथ रखने के कारण, हमारी जो मेहनत है, दुनिया वाले तो कहते हैं कि आपने पता नहीं क्या क्या छोड़ करके आए, वो कलर ड्रेस छोड़ा, आपने जल्दी उठ जाते हो, दुनिया में कोई भी प्रकार की वो चीजों में आप नहीं जाते हो, लेकिन हम लोगों को कैसे लगता है, वो तो नेचुरल लाइफ है, सुबह उठना, ये तो हमको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि एक तो जहां प्यार होता है, जहां स्नेह होता है, वहां कोई भी चीज करना कोई कठिन नहीं लगता है, बच्चे भी जैसे खेलते ये करते हैं, पापा है तो अपने मन पैर पे दौड़ते रहते थे, तो ऐसे ही माना हमें भी एक तो खुद को भी ऐसे अनुभव की अथॉरिटी में वो सुख खुशी में हमको रहना है, बाबा को साथ रखना है, भिन्न भिन्न जो भी समय समय पर चिंतन या गुणों की बात ये सब बातें। लेकिन रही बात जो प्रश्न हम आपको पूछ रहे थे, जो ब्राह्मणों की ईश्वर के गुण, आप फिर भी विचार करना इस पर, मेरे को जो थोड़ा सा चिंतन जो किया हूं वो आपको बताना चाहता हूं दो मिनट में। तो एक है कि जैसे बाबा के बच्चे बनने के बाद सबसे पहले बाबा ने कहा रूहानियत हो, ये हमारी ईश्वरीय, बाबा ने कहा कि ये जो फैमिली है ना, तो ये अलौकिक फैमिली है, ये अलौकिकता हो हमारे में, ये जो है हमारे ईश्वरीय गुण है, और यही अलौकिकता हमें दिव्यता में बदल करके फिर वहां ट्रांसफर हो जाएंगे हम, माना वही जो प्यार है वो फिर सतयुग में हमारे आपस में वो प्यार रेस्पेक्ट भी होगा। और दूसरा फिर हमें तो पुरुषार्थ के लिए कहा कि आपको बेहद की वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति, फिर ईश्वरीय कहा सबके प्रति कल्याण की भावना, रहम दिल हो, तो ये सब जो है ईश्वरीय गुण में आ जाता है, जो ब्राह्मणों का हमारा ये सब चीजें होनी चाहिए। और दैवी गुण में हम क्या लेंगे, तो जैसे बाबा कहते हैं कि आपने कहा मधुरता, क्योंकि बहुत मीठे देवताओं को बड़े मीठे और आपस में बड़े वो लोग प्यार से, मैनर्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, और रॉयल्टी, तो ये चीजें जो है देवताई गुण है। तो हमारे जो दीदियां हैं उनको तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा दी जाती है, कि कैसे उनके अंदर मैनर्स हो, लेकिन प्राय मैं समझता हूँ जो बाबा ने उनको निमित्त बनाए हैं वो भी हम जो भी स्टूडेंट के रूप में हम गीता पाठशाला या सेंटरों में आते हैं उनको भी जरूर वो मैनर्स सिखाते हैं। और बाबा तो हमें समय से पर बताते हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों में बड़ों से हमें कैसे बात करना है, किस प्रकार के बैठना है, अगर कोई बड़े आते हैं हमारे पास उनसे हम कैसे हैंडशेक करते हैं, और मतलब ऐसे कई चीजें होती है जो एक छोटी छोटी मैनर्स एटिकेट होती है जो थोड़ी सी माफ करिएगा। तो फिर कई बार हम देखते हैं बाबा कई बार मूल्य में कहते हैं तू तू करके कभी बात ना करना, हाँ तो ये भी एक बहुत बड़ी मैनर्स है। और लेकिन हमारे में से आप देख लेना, मेरे को ये यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप कहें, क्योंकि आप तभी कह सकते हैं ना जब आपके प्रति मेरा गुणों का दर्शन हो, आपकी कोई विशेषता को मैं देख रहा हूँ। अगर मैं आपके कोई अवगुण को देख रहा हूँ और आपको कुछ अलग प्रकार की फीलिंग मेरे पास है तो फिर मैं आपको आप कैसे कह सकता हूँ। मेरे तो फिर मना, तो बाबा भी कहते हैं कि कोटों में कोई बाबा के बच्चे जो बाबा ने चुन चुन करके लाए हैं वो कितने महान हैं। और बाबा ने कभी कहा था कि आज की जो प्रेसिडेंट है तो उनसे भी कितना ऊंचा है, उनकी कितनी पूजा होती है, कितने बड़े बड़े साइंसदान हुए हैं, कितने धर्मगुरु हुए हैं, कितने समाज को नए दिशा देने वाले हुए हैं, कितनी कई चीज माना महान आत्माएं इस दुनिया में हुए हैं। लेकिन सृष्टि नाटक में वे आत्माएं हम सब हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में कितने एक्यूरेट हमारी पूजा होती है। तो ऐसे कुछ सोमान, ऐसे कुछ चिंतन, ऐसे कुछ दूसरों को देखने की, जो ईश्वर के हम बच्चे हैं, ये रूहानियत ये सब जब होगा तो फिर ऑटोमेटिक हमारी यही जो अपनापन, ये जो एक ईश्वर देखो प्रजा पिता, तो अभी पिता के रूप में हम बच्चों को यहाँ पालना बाबा दे रहे हैं, वहां फिर हमारे वो माता पिता के रूप में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में हम प्रजा बन जाएंगे, प्रजा पिता। बड़ा सुंदर इसे ईश्वरीय फैमिली के रूप में यहाँ राजा ही स्थापना, बाबा का धर्म और राज्य दोनों स्थापना हो रही है। और धर्म पिताओं ने धर्म और राज्य की स्थापना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने ईश्वरीय, और हमको कभी पता लग रहा है कि हम कोई प्रजा है, वो तो परिवार है, ये तो अपनापन है भाई। ट्रेन में कहीं पर भी कोई और सफेद ड्रेस वाले कोई भाई बहन मिल जाते हैं इतना खुशी होती है भाई हमारे कोई अपने लोग हैं यहाँ पर। तो मतलब भले हम उनको नहीं भी पहचानते हैं, कभी एक बार भी मुलाकात नहीं हुआ होता है, लेकिन कैसे लगता है कि अपनापन, क्योंकि हमने काफी समय जो 21 पीढ़ी 21 जन्म माना अलग अलग माना हम साथ में वो रहे हैं। तो इस प्रकार से आज कुछ बातें बाबा ने पूछने को अपने को कहा है, कभी अपने को भी पूछना अगर कोई मतभेद हमारे में है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको जो है जड़ से मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, मतलब थोड़ा सा उस पर विचार करते हुए वो क्या नुकसान कर रहा है, संगम युग का कैसे प्राप्तियों से हमको वंचित करा रहा है, तो ऐसे अपने से बात करते हुए जो कल बाबा ने कहा था कि शुभ चिंतक, कल था ना, तो शुभ चिंतन में हम, क्योंकि सबसे बड़ी हम ऐसा समझते हैं जो गुण हमारी यही जो ईश्वरीय हम जो गुण प्राप्त कर रहे हैं कैसे शुभ चिंतक बन करके दूसरों के प्रति ठीक है, लेकिन अपने प्रति भी अपने को हीनता के रूप में नहीं देखना है। मेरे अंदर अवगुण ठीक है, अवगुण है उसको एक्सेप्ट भी करना है, अवगुण है मियां मिट्ठू भी नहीं अपने को करना है, लेकिन उस अवगुणों को देखते हुए समझते हुए भी उसके क्या गुणों को हम अपने अंदर लाएं, तो ला करके भी उससे हम शुभ चिंतन का जो है वो करें, शुभ भावना शुभ कामना हम सबके प्रति भी रखें। तो जो बाबा ने कहा ना कि ये संगम को कौन सा नाम दिया, ऑस्पिशियस एज, हाँ, और भी कहा कल्याणकारी मेला, हाँ हमेशा कहते थे कि ये ईश्वरीय आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, ईश्वरीय मेला, वो मेला में तो जाकर के मेले हो जाते हैं, खर्चा भी जेब खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या कहा कि कल्याणकारी जो मेला है, तो कल्याणकारी मेला वो मिलन कितने हम उसको मना रहे हैं। बाबा ने ये भी पिछले भी में भी कहा था कि वो रू रिहान करे हम बाबा के साथ कैसा, और जो लोगों ने भी वो मेला देखे हैं बड़ा वाला मेला, तो मैं समझता हूँ कुछ भाई बहने आप ये भी बैठे होंगे जिस समय बाबा नीचे उतर करके भी, वो एक तो डायमंड हॉल में भी दृष्टि देने के लिए भी जाते थे और उससे पहले ओम शांति भवन में भी जैसे कि वो रंग भी होली वगैरह में भी मारते थे, मतलब नीचे आकर के स्टेज पर नहीं, जैसे यहाँ ज्ञान सरोवर की उद्घाटन जब हुआ था ना, तो यहाँ से फिर जाकर के उधर झंडा लहराए थे ना आर्ट गैलरी के सामने, वो अभी लगा हुआ है। तो मतलब वो भी कैसे मेला आत्मा और परमात्मा का, वो भी क्या जिसने अनुभव किया है, वो तो किया है, वो तो आज तो एक इतिहास रह गया, वीडियो ही हम देख रहे हैं। खैर ये भी बहुत सौभाग्य है हमारा। और दूसरा जो गुणों की बात आती है, ये जो एक दूसरे के गुणों को देखना, और सबसे बड़ी गुण बाबा ने कहा है जो ईश्वरीय गुणों में आता है, ब्राह्मणों में आता है, कि इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये अविद्या की बातों में हमेशा बाबा कहते हैं इच्छा, लेकिन क्या हमारी इच्छा नहीं होना चाहिए? इच्छा तो होना चाहिए, इच्छा के बिना तो हम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो इच्छा, एक होता है आवश्यकता और एक होता है इच्छा कामना, माना मुझे मान मिले, मुझे चांस देवे। बाबा कहते बात रखो, अगर आपको चांस मिला तो अच्छी बात है, अगर लेकिन अपने पुरुषार्थ के लिए अगर आपको कोई मौका दिया जा रहा है, आप उसको दूसरों को थोड़ी देना है, वो तो आप खुद आगे चांस लेकर के चांसलर बनना है ना। और कई बार वो जब हम दूसरों को भी दे देते हैं अपनी जो स्व पुरुषार्थ में, फिर हम अटक जाते हैं। ये भी थोड़ा सा हम ब्राह्मण बच्चों को भी देखना है, करना चाहिए। और हम देखते हैं कि कोई भी कार्य आप करते हो, बाबा अगर आपके द्वारा करवाते हैं तो वो क्वालिटी भी बाबा भर देते हैं। ये भी बहुत हमें पता नहीं होता है, हमें थोड़ा अंदर से ख्याल रहता है, तो ये भी हमारे अंदर होना चाहिए, ये भी गुण, ईश्वरीय गुण, क्योंकि ये हमें आपको अपने को चेक करना है। और मुख्य बात क्या कहना चाहता था कि संतुष्ट रहना, इच्छा मात्रम, आवश्यकता तो ठीक है उसके लिए आप पुरुषार्थ करो, लेकिन संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, एटलीस्ट 95%, ये विशेष हमें जो है, यही चीजें हमको सर्टिफिकेट यहाँ हमें जानते हैं आप किस किस चीजों से लेना है सर्टिफिकेट। और विशेष जो बाबा ने कहा दिल पर चढ़ने की बात है, उसमें भी आप देखना बाबा के दिल पर कौन, बाबा ने कहा मैं भोलानाथ हूं, लेकिन किस बात पे मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं? हाँ जी, नहीं ये तो बाबा ने बताया सर्विस का, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, गुड। हाँ बाबा कहते हैं कि और कुछ भी हमारे पास ना हो, लेकिन अंदर बाहर दिल जो है ना साफ हो। हाँ बाबा ने एक मुरली चलाया था, आप लोगों को याद होगा, सच्चाई के ऊपर कहा था कि मैं सत्य बाप हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, सती स्थापना करता हूँ, गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत सारे बातें उसमें कहते थे, सच तो बिठो नच, फिर बहुत सारे उसमें कहते हैं सत्य नाम गत है कुछ, शरीर छोड़ते, ऐसे सारे तो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी बातें ऐसे याद आ गई मरु तो। हाँ और बातें, हाँ मतलब किन किन बातों का कई सारे गिनती उन्होंने करवाया था। तो सत्यता का मतलब क्या है कि केवल मैं सच बोल रहा हूं? नहीं, मैं जो सत्य आत्मा, केवल पॉइंट रिपीट हम यहां नहीं कर रहे हैं, कुछ हम चिंतन करके उस बाबा ने आज जो ज्ञान दिया, उस ये मैं रहते हुए वो लून पानी ना हो करके एक दूसरे की बातों को भले हमको अच्छा भी ना लगे, उस समय हमें एक्सेप्ट करके जो चीज हमको सही ना लगे तो उसको किनारा कर दें, पास्ट कर दें, क्वेश्चन ना उठाएं, लेकिन हमारी कैसे हो सकते हैं हम एकमत, वो जरूर विचार आप करें। हर एक का फील्ड अपना अपना होता है, लेकिन आप कहेंगे हमारा तो यहां पर तो सब कुछ है, हम भट्टी कर रहे हैं, कोई मतभेद की तो किसी की बात नहीं। आप पास्ट में जहां पर आप रह रहे हो वहां पर भी अगर किसी के साथ कोई कंफ्लिक्ट है, थोड़ा अलग अलग मत है, तो वहां पर भी आप यहां से उसको इमेजिन करके, उस पर चिंतन करके क्या चीजें अप्लाई करोगे, क्या बाबा ने उसके लिए कहा है, एक्यूरेट बनना है, तो वो एक्यूरेट होगा तभी तो एक्यूरेट पद में हम ट्रांसफर होंगे ना। नहीं तो हमारा बाबा का अगर मुरली का अगर विचार करो तो कितनी आज गहराई है और कितनी मैंने बड़ी बातें बताई कि जो अंतमति जो आपने कर रहे हो, जो अंत में आपकी जो स्मृति रहेगी ना, जो धारणा में जिस तरह से आप, वो तो कहते हैं जैसे जैसे वो जानवर फलाना बनते हैं, लेकिन बाबा भी हमको क्या, हाँ तो वो अंत में एक बाप की हमारी याद रहे वो जो समय समय पर, तो वो फिर हमको जो है वो गति हमको वो देंगी। नहीं तो हमारा सारा पुरुषार्थ, कितना लंबा हमने इस ज्ञान में हमने अपने को लिया, लेकिन हमारी वो धारणा, वो जो अंतमति अंदर हमारा क्या चल रहा है, हमारा भावना में कई बार सकारात्मक विचार तो होता है, लेकिन जो बाबा कहते हैं ना चिंतक चिंतन, माने हमारी फीलिंग भी सकारात्मक हो, सकारात्मक, और वो तभी हो पाएगा जब हमारी रूहानियत होगी, फैमिली समझेंगे। क्योंकि फैमिली में कोई हमारी भाई बहन आगे बढ़ते हैं या कोई गलती कर देता है तो हम उसका बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि फैमिली का, अपने भाई का, अपनी बहन, तो कई बार हो जाता है हम बता देते हैं किसी को। लेकिन ठीक है, जहां जरूरत है, जहां बताना चाहिए वो सही है बताना, तो उस जगह पर भले दो, बड़ों को देख करके आप निश्चिंत हो जाओ, वो अलग चीज है, लेकिन फैलाना नहीं है। तो उससे कि वह वातावरण में जो रूहानियत है वो फिर वो चीजें नहीं रहेगी। तो ऐसे कुछ एक बातें अगर हम रखें तो फिर हमारी जो यहाँ का जो पुरुषार्थ है, यहाँ की जो धारणाएं हैं, तो वो फिर हमारी जो लून पानी की बात जो बाबा ने कहे, तो फिर बाबा को हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यही फैमिली, यही अपनापन, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम वहाँ दैवीय में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर भी अगर आज की कोई बातों में मूल्य की कोई बात अगर रह गए हो तो मुख्य कोई आप हमें याद दिलाइए। हाँ, पटरन बाबा हमको पटरानी बनाना चाहते हैं और हम क्या बन जाते हैं। हाँ जी, कभी कभी हंसी में ये बातें बाबा भी, कई ने हमारे भाई जी ने कोई नहीं सुनाए थे, खटरानी मतलब हमारे तो अलावा उठना है वो राजा ही, ये छोड़ना नहीं चाहते, वो राजा ही हो जाए, यही राजा ही ओढ़ के सो लेते हैं। तो हाँ, लेकिन हमें तो पटरानी बनना है, पटराजा भी बनना है, लेकिन यहाँ तो हमारा त्याग तपस्या का जीवन है, तो यही त्याग ही हमारा, जो बाबा ने कहा दही अभिमानी, देह अभिमान का त्याग ही, जो देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, तो इस पर भी आप अच्छी रीति जानते हैं और विचार भी करना, कैसे कैसे हमको कहाँ कहाँ कितने सूक्ष्म रूप में ये चीजें हमको पकड़ रहा है, तो जिससे फिर हम जो पद से हमको वंचित करा रहा है, खास देह अभिमान की बात आज बाबा ने कहा है, जिसके कारण कंफ्लिक्ट होती है, जिसके कारण ये होती है, तो उसको हम कैसे धीरे 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 करके छोड़ते जाएं। और आगे समय इशारा कर रहा है जी, बहुत अच्छा, ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद में बैठें, फिर चलते हैं।